जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिता जय गौरानिता। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मायापुर नवदी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगामयी यमुनामयी की ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की दाय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ग्रन्थरा श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेका का धावा। श्लोक क्रमांक 12। युक्तेषु एवं प्रमत्तस्य कुटुंभा आसक्ता चेतसः आससा सह वै कालः यः अप्रियः प्रिययोषिताम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात् स वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात् स वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात् स वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषितम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात् स वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात् स वै कालो यो अप्रिय प्रिययोषिताम्। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससात् स वै कालो
यो अप्रिय प्रिय योषिताम।
माता है
युक्तेशेवं प्रमत्तस्य कुटुंबासक्त चेतसः आशसात्सवै कालो यो अप्रिय प्रिय योषिताम।
युक्तेषु उपयोगी कर्मों में एवं इस प्रकार प्रमत्तस्य असावधान रहकर कुटुंब परिवार के प्रति आसक्त अनुरक्त चेतसः चेतना आससा आ गया सह वह वै निश्चय ही कालः मृत्यु मृत्यु समय यहा जो अप्रिय अच्छा ना लगने वाला प्रिय योषिताम जो पुरुष स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं उनके लिए अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा शिल प्रभुपाद की। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्मकांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तात्पर्य इस श्लोक में प्रिय योषिताम तथा अप्रिय अत्यंत सार्थक शब्द है। योषित का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा या मनभावना। मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं और जिसका अंत संभोग में होता है। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग में जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला। उसने उसे यह कहकर आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम सदा जीते रहो। फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मिला तो उससे उसने कहा, चाहो तो जियो या मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी भक्त मिला तो उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ। अंत में उसे एक शिकारी मिला, उसने कहा, ना तो जियो ना मरो। बात ऐसी ही है कि जो लोग कामी हैं और इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं वे मरना नहीं चाहते। सामान्य रूप से राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसलिए साधु ने कहा कि तुम सदा जीते रहो, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा सुख भोगेगा और मरने के बाद नरक जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था जिससे कि वह भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु पुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह तुरंत मर जाए जिससे वृथा श्रम करते रहना ना पड़े और वह भगवद्धाम जा सके। साधु पुरुष चाहे मरे या जीवित रहे, क्योंकि जीवन के दौरान वह भगवान की सेवा में लगा है और मृत्यु के बाद भी वह भगवान की सेवा ही करेगा। उसका अथवा वर्तमान जीवन तथा अगला जीवन एक सा ही है, क्योंकि वह दोनों प्रकार से भगवान का ही सेवा करता है। क्योंकि शिकारी पशुओं के वध का जघन्य कार्य करता है और चूंकि मरने पर वह नरक जाएगा, इसलिए उसे उपदेश दिया गया कि वह चाहे जिए या मरे। अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है और यद्यपि वृद्ध पुरुष इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख,
किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। ऐसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना तथाकथित वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मूर्ख रूसी विज्ञानी भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से वे मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सिरफिरों के नेतृत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु इन सबों को समेट लेती है। यद्यपि वे सदा जीवित रहना चाहते हैं, हिरण्यकश्यपु में ऐसी ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, किंतु जब समय आ गया तो भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर बताया गया है कि इस प्रकार राजा पुरंजन कर्मकांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि पुरंजन ऐसे जगह ऐसे समय में पहुंच गए कि वो अब बूढ़ा हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, जब शरीर युवक रहता है तो युवावस्था में अपने जितना कैपेसिटी है उतना एंजॉयमेंट करते हैं और भगवान का भक्ति में समय नहीं देता है, तो अंत में बूढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़ा हो गया तो अभी वो इंद्र तृप्ति से विमुख हो जाता है। तो इंद्र तृप्ति तो करना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसा जो ये है यहाँ पर ये बता, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं यो अप्रिय प्रिय योषिताम, जो ऐसे लोग हैं उनको ये वृद्धाप्य अच्छा नहीं लगता है। तो बुढ़ापा जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको हमेशा ये डर रहता है कि अभी मृत्यु आएगा। तो मृत्यु तो हर एक को होता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, मतलब जिसका जन्म हो गया उसको मृत्यु है। लेकिन भगवान के भक्त जो है वो उनको भी मृत्यु आता है, लेकिन उनका मृत्यु और जो मेटेरियलिस्टिक जो भौतिकवादियों का मृत्यु है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बिल्ली है, बिल्ली के मुंह में चूहा जाता है तो उनको कष्टप्रद स्थिति है और वो नहीं चाहता है कि मुंह के अंदर रहना नहीं चाहता है क्योंकि उसको इमीडिएटली मृत्यु होने वाला है। लेकिन उसी प्रकार एक भक्त होता है, भगवान का भक्ति करता है, जीवन भर भगवान के भक्ति करते समय उनको जब मृत्यु होता है उनको पता है कि वो अभी जाने वाला है कहाँ, वो जाने वाला है भगवान के धाम में, तो उसके लिए उसको कोई डर नहीं, डर नाम की चीज नहीं है। तो उनको ये लास्ट लाइफ है, मृत्यु तो होगा, मतलब ये शरीर है, भौतिक शरीर है, उसको त्याग करना है, लेकिन दूसरा शरीर अभी ग्रहण करने वाला है, वो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर है। तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए जा रहा है, भगवान के धाम में जा रहा है और जीवन भर भगवान का भक्ति करके और वो ऐसे क्षण को राह देख रहा है कि कब मैं भगवान के धाम में जाऊंगा और भगवान से मिलूंगा। तो ये इनके लिए ये कष्टप्रद स्थिति नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी परीक्षित महाराज को भी शाप मिला था। जब परीक्षित महाराज जंगल गए थे, श्रृंगी नाम के बालक ने उनको शाप दिया था कि आप एक हफ्ते के अंदर मर जाएंगे। तो शाप मिला तो परीक्षित महाराज ने उनको फिर से शाप दे सकते थे, तो पूरा क्वालिफाइड थे श्रृंगी को शाप देने के लिए, लेकिन वो भगवान की इच्छा से ये ऐसे घटना घटी थी। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु तो होने वाला ही है, तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता हूँ ताकि मैं मुझे इससे और नीचे जाना पड़ेगा, तो बल्कि मैं भगवान के भक्तों के पास जाता हूँ। ऐसे कई सारे मुनि योगियों के पास गए लेकिन कोई भी उनको नहीं बताया कि अभी 7 दिन है, 7 दिन के अंदर क्या कर सकता है, तो इतने कम समय में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अंत में वो गए सुखदेव गोस्वामी के पास। सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि आपके पास 7 दिन है, तो इतना टाइम है, आप चिंता क्यों कर रहे हो, तो करना क्या है। उन्होंने बताया कि कुछ नहीं करना है, आप बैठो, मैं भगवान की कथा करूंगा और सुनो, बस सुनने मात्र से आपका ये परफेक्शन हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो ये जो व्यक्ति भौतिक कार्य में समय बिताता है तो उनका हर रोज उनका सूर्य है, उदय होता है और अस्त होता है, तो उनका ये समय को वो छीन लेते हैं, तो उनका आयु को छीन लेते हैं। तो आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ, मतलब उनका हर रोज, मतलब अभी जो वर्तमान काल दिख रहा है कुछ देर के बाद वो क्या होगा, भूतकाल हो जाएगा, मतलब अभी वो एक दिन निकल गया। तो स्वर्ण कोटि मुद्रा, मतलब करोड़ों सोने का सिक्का देके भी कितने भी बड़ा वैज्ञानिक होगा वो उसको वापस नहीं दे सकता है। तो हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है तो बहुत ही लब्ध्वा सुदुर्लभम देहम बहु संभवन्ते, मतलब अनेक अनेक जन्म के बाद ये हमको ये मनुष्य शरीर मिला है और ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भक्ति करने के लिए, तो उसको छोड़कर हम भगवान का भक्ति छोड़कर अन्य कार्य करेंगे तो ये हमारा ये बहुत बड़ा ये व्यथा का ये स्थिति है। तो बताते हैं कि तस्य अर्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया, जो व्यक्ति भगवान का कथा सुनता है या पढ़ता है तो भक्तों का संग करता है उनका समय को सूर्य हरण नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद जी एक क्लास दे रहे थे तो वो बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, भगवान का कथा सुनता है, नाम जप करता है और गुरु का इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जीवन बिताता है, उसको सूर्य उनका आयु को हरण नहीं कर सकता है। सूर्य क्या, उसका पिताजी और पिताजी भी उसका कुछ नहीं कर सकता है, प्रभुपाद जी बोलते। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरी डे वी शुड रीड श्रीमद् भागवतम, हर रोज हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज को तो कम से कम 7 दिन का मौका मिला था अभी उनको पता था कि 7 दिन तो कम से कम जिएगा, लेकिन हमारा कभी भी गारंटी नहीं है, कभी भी हमारा हरी बोल हो सकता है। तो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं खुद ही हूँ। अभी कुछ महीने पहले मैं डॉक्टर ने पूरा डिक्लेयर किया था, अभी वो एक डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आए थे, वो बता रहे थे कि आपके जैसा 1000 केस आ चुका है और आज तक एक भी व्यक्ति बचा नहीं है। और कुछ भक्तों ने एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन मेरे भाई ने भी देखा था, अब इसका पूरा स्टार पूरा मिल के आ गया। लेकिन भक्तों का इतना कृपा है, भक्तों ने प्रार्थना किया, हरे कृष्ण मंत्र जप किया, तो वो मतलब बच गया। मतलब भक्तों के प्रार्थना, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक भक्तों की कृपा नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। भक्तों के जो प्रार्थना में इतना शक्ति है, इसलिए एक गुरु और वैष्णवों का कृपा से ही व्यक्ति अपना जीवन को उद्धार कर सकता है। तो ऐसे मतलब अभी हमारा कभी भी कुछ गारंटी नहीं है कि कब हमारा ये मृत्यु होगा, तो कभी भी आ सकता है सडनली। ऐसा नहीं था कि कोई बीमार था और कुछ भी, मैं प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ कई सालों से मैं मंदिर में था, कभी भी एक बीमारी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सडनली आ गया तो लास्ट मोमेंट है। मतलब अभी अभी डॉक्टर ने भी होप छोड़ा था, लेकिन ऐसा कभी भी हो सकता है, ऐसा मेरा हो गया तो ऐसा किसी का भी कभी भी हो सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कभी भी मतलब हमेशा भगवान का जो श्रीमद् भागवतम को रेगुलर बेसिस में अध्ययन करना चाहिए। तो ये भगवान का जो भक्ति है, तो थोड़ा मात्र करने से भी स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान का थोड़ा सा भक्ति हम करेंगे, भक्तों के और गुरु के गाइडेंस में करेंगे, तो त्रायते महतो भयात, सबसे महान भय क्या है, मृत्यु है, मृत्यु से व्यक्ति बच सकता है। त्रायते महतो भयात। तो भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं, ये इस जगत में हमेशा सुख के पीछे दौड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ आपका ये लोग यहाँ पर है हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। अमेरिकन में जब प्रभुपाद प्रचार करने गए तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ के लोग बहुत रेस्टलेस हैं, एक जगह नहीं रहना चाहते। आज अमेरिका में है तो कल इंग्लैंड में जाएंगे, कल रशिया में जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं सुख ढूंढना चाहते हैं। तो अमेरिका से वो रशिया जाने से, अमेरिका से इंग्लैंड जाने से वो सुखी नहीं हो सकते हैं। तो सुख आपके पास है, जब आप भगवान का भक्ति करेंगे तो आप सुखी हो सकते हैं। कोई भी हमारा स्थिति को बदलने से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति एक जेल के अंदर है तो वो सोचता है कि ये कमरे में मुझे सुख नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरे कमरे में जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा। नहीं, कमरा बदलने से कुछ होता नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप जेलर के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जेलर आपको जेल से बाहर निकालेंगे तो आप सुखी हो सकते हैं। उसी प्रकार जब भगवान का हम भक्ति करके भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं तो कि ये भौतिक जगत से मुझे निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार के जेल है। ये जेल में हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये एक जेल का एक कमरे के बराबर है। तो ये जेल के कमरे से बाहर जब तक निकलते नहीं है तब तक हम कोई भी पोजीशन में हम सुखी नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतना तक कि ब्रह्मा जी को आयु कितना है, ब्रह्मा जी का आयु तो 100 साल है, लेकिन हमारे 100 साल और ब्रह्मा जी के 100 साल में कई अंतर है। तो सहस्र युग पर्यंतम, मतलब यहां पर करोड़ों करोड़ों साल हमारा, तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनका जो एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस में उनका समझ नहीं सकते हैं। तो ये हमें भगवान का नाम का जप करना होगा और भगवान का कथा सुनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। भगवान का जन्म कर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। तो व्यक्ति एक बार शरीर त्याग करेगा और भगवान के धाम में जाएगा तो फिर उनको फिर से ये भूत जगत में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें यही शरीर को ये लास्ट शरीर बनाना होगा। तो एक बार हम भगवान के धाम में जाएंगे फिर से हम वापस नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कि व्यक्ति किसी को दान में पैसा दान में देता है ना, तो पैसे दान में देते हैं तो वो क्या है, हमारा बैंक बैलेंस जैसे बन जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक हाफ एजुकेटेड ब्राह्मण को दान देगा तो वो अगर 100 रुपए देगा तो वो अगले जन्म में उनको डबल होके मिलेगा, और ये फुल्ली क्वालिफाइड ब्राह्मण को दान देंगे तो 100 times या 1000 times मोर इसमें मल्टीपल होके हमको मिलेगा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेद पारंगत को अगर मिलेंगे तो उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमारा जो ये समय भी ऐसा है, तो अगर हम समय को भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं तो समय तो हर एक के लिए 24 आवर्स है, लेकिन जितना ज़्यादा समय हम भगवान के सेवा के लिए लगाते हैं उतना हमारा ये क्रेडिट हो जाता है। उस समय को जितना समय भगवान के भक्ति में, भागवत पढ़ने में, भगवान का नाम लेने में और भक्ति में, भक्तों के संग में हम बिताते हैं, उतना हमारा समय को सूर्य हरण नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमेशा भगवान का भक्ति में ही हमें रहना चाहिए। ये भौतिक जगत में ये कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इनके पुरंजन के बारे में बताया गया है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक क्लास में बताते हैं कि कृष्ण प्रेम वैवर्त पुराण में बताया है कि कृष्ण बहिर्मुख भोगवांच करे ना, तो व्यक्ति जब इच्छा करना करता है कि मुझे भोग करना है और मुझे एंजॉयमेंट करना है, तो वो भगवान को छोड़कर एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो भगवान उसका इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो 3 गुण में आकर और हमेशा नाना योनि में घूमता है। तो अभी मनुष्य शरीर में है तो दूसरा देवता का शरीर में कभी जाता है, कभी जानवर का शरीर में घूमता है। तो ऐसे नाना योनि में घूमता है और कदर्य भक्ष करे तार जन्म अधपत है, तो ऐसे घूम घूम के उसका जीवन अधपतन हो जाता है। तो मन षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, तो मन से पकड़ के 5 इंद्रियों को लेके वो हमेशा इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ता है। तो जब इंद्र तृप्ति में ऐसे घूमते घूमते, मतलब ये भौतिक जगत में प्रयास करता है सुखी बनने के लिए। तो मैं अभी मायापुर में था, तो मायापुर में वहाँ पर एक डॉक्टर ICC मीटिंग था, मीटिंग में वो डीओटी डॉक्टर है, हमको सेमिनार दे रहे थे। तो सारे जगत में लोग डर रहे हैं और अभी तो कैंसर में लोग मर रहे हैं। तो कैंसर में आगे जाकर बताया गया कि हर एक 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति कैंसर में मर जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया आगे जाकर। तो इसलिए कैंसर बहुत ही डेंजरस ये है, तो व्यक्ति मर रहे हैं। तो आजकल जो विज्ञानी लोगों ने भी इसका ये किया, पहले कैंसर का सॉल्यूशन निकाला कि कैंसर सेल्स जो है हमारा, हम जो खाते हैं उसको सब कैंसर सेल ले लेता है, तो व्यक्ति मर जाता है। लोगों को लगा कि और उनको ज़्यादा खिलाना चाहिए, जितना ज़्यादा खाएगा थोड़ा बहुत तो उनको भी मिलेगा, कैंसर सेल को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। लेकिन बाद में उनको मालूम पड़ा कि कैंसर सेल और ज़्यादा बलिष्ठ होते जा रहा है, ये लोग मर रहे हैं, तो इसकी वजह से जल्दी से जल्दी मर रहे। लेकिन अभी एक नया डॉक्टर है, उन्होंने एक ये निकाला, दवाई निकाला, वो उसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो बताया गया कि वो जितना ज़्यादा हम उपवास करेंगे उतना अच्छा है। तो ये शास्त्र में पहले से पता है, लंघनम परम औषधम है ना, इसे भक्तों को पहले से पता है। तो डॉक्टर लोगों को भी, अभी ऐसा नहीं कि भक्त था, वो बाहर का व्यक्ति था, उन्होंने बताया कि हफ्ते में एक बार उपवास करने से आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सेल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। और आपको ये बहुत सारे वो एक्सप्लेनेशन दिया क्यों फास्टिंग वगैरह करना चाहिए। तो ये फास्टिंग भी करना बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति वो कैंसर से बचने के लिए, मतलब उनको ज़्यादा ज़्यादा, मतलब हफ्ते में एक बार बताया, हमारा तो 15 दिन में एक बार है। तो उन्होंने वो डीओटी डॉक्टर ने एक भक्त को बताया, देखिए ये तो बाहर के लोगों का भी ये एक्सप्लेनेशन है, आपको उपवास करना बहुत अच्छा है, तो हम लोगों के लिए अच्छा है, 15 दिन में एक बार हम निर्जल कर सकते हैं। तो निर्जल तो कोई करता नहीं, वो डीओटी डॉक्टर ने डीओटीज को बताया कि आपको, वो डीओटी को बताया कि आप 15 दिन में एक बार उपवास करिए अच्छा है। तो उन्होंने बताया ठीक है उपवास तो करूंगा मैं, एकादशी को नहीं करूंगा। बोले क्यों? एकादशी को इतना फीस्ट होता है हमारा तो ये एकादशी छोड़ के उपवास करने के लिए बताइए, तो एकादशी हमारा डबल हो जाता है। मतलब बता रहे थे कि वो पूरा एक्सप्लेनेशन करके बता रहे थे उपवास करना भी अच्छा है। तो ये हम इंद्रिय तृप्ति करने से हम सुखी नहीं हो सकते, मतलब जितना हम लोग इंद्रियों को, मतलब इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने से हमको असली सुख नहीं मिलता है। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी वो दे रहे थे कैसे हम सुखी हो सकते हैं। तो ये भौतिक जगत में यहाँ पर पांचवी कैंटो में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जीवात्मा हर जगह घूमता है, तो भौतिक जगत में व्यक्ति सुखी सुख अनुभव करने के लिए जाता है। तो उनका यहाँ पर बताया गया कि जो इंद्रिया है वो रोग एंड थीव्स है। तो हमारा जो इंद्रिया है, हालांकि व्यक्ति भगवान का भक्ति करना चाहता है, लेकिन इंद्रिया क्या करता है, इंद्रिया उनको इंद्रिय तृप्ति के पीछे वो खींच के लेता है। हालांकि चाहता है वो भगवान का भक्ति करने के लिए, लेकिन इंद्रिया ये रोग एंड थीव्स जैसे हमको इंद्रिय तृप्ति की ओर खींच लेता है और एक अंधकार के जगत में हमको डाल देता है। तो तमोगुण में और रजोगुण में आके वो इंद्रिय तृप्ति करता है। तमोगुण और रजोगुण में जब तक व्यक्ति रहता है तब तक वो असली चीज को असलियत में देख नहीं सकता है। जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज क्लास में बता रहे थे कि ये जो तमोगुण और रजोगुण कैसे, अगर कोई व्यक्ति एक लकड़ी है उसको अंधकार मतलब अंधेरा जगत में रख रहा है तो उसको कोई देख नहीं सकता है, और ये है तमोगुण है। रजोगुण है वो क्या है, वो थोड़ा सा ये इसका धुआं निकल रहा है, धुआं निकलते समय भी देख नहीं सकते, लेकिन ये लकड़ी में जब आग लग जाता है तो उसमें प्रकाश होता है, वो प्रकाश में वो सब कुछ देख सकता है। उसी प्रकार भगवान हालांकि हर एक को मदद कर रहे हैं, लेकिन भगवान का जो हाथ को व्यक्ति देख सकते हैं जब सत्वगुण में आता है। जैसे यहाँ वहां पर बताते हैं कि ये असुर लोग है, कभी कभी वो लोग भी जीतते हैं और देवता लोग भी जीतते हैं। लोगों को लगता है कि देवताओं को भगवान मदद कर रहे हैं, असुर लोगों को मदद नहीं करते हैं, भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हर एक को मदद करते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में रहता है तो भगवान का हाथ को देख नहीं सकता है। तो ये ऐसे ये बताया गया कि ये फॉरेस्ट ऑफ मेटेरियल एंजॉयमेंट, उसमें बताया गया कि तो व्यक्ति श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौरनिता की, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी मार्केट में बिजनेस करता है, तो वो बिजनेस में वो सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो क्या करता है, कभी कभी जंगल के अंदर जाता है और जंगल के अंदर जाता है और कुछ चीजों को छूनता है और शहर में आके बहुत अच्छा प्राइस में उसको सेल करता है। तो ऐसे जंगल में जाते समय कभी कभी रोग एंड थीव्स उनको छीन लेते हैं। और इसके बाद बताया गया कि ये जंगल के अंदर फेरोशियस एनिमल्स जैसे जैकल एंड फॉक्सेस, जैसे बताते हैं हमारा फैमिली मेंबर्स है, वो उनको ये छीन लेते हैं। तो इसके वजह से उनका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाता है। तो इसके वजह से जब वो हालांकि वो आध्यात्मिक कार्य करना चाहता है, लेकिन भौतिक जगत में जीने के लिए उसको कभी कभी इम्पायस एक्टिविटी भी करना पड़ता है, ऐसे कार्य करना पड़ता है, कभी चोरी करता है तो ऐसे, कभी चीटिंग करता है, कभी ऐसा कार्य भी करना पड़ता है। तो उनको लगता है कि मैं चोरी करूंगा और ये चीटिंग करूंगा लोग देखेंगे नहीं, लेकिन भगवान का जो विटनेस है उससे बच नहीं सकते हैं, सूर्य है चंद्र है सब कुछ उनका विटनेस है। तो इसके अलावा जब भौतिक जगत में जब जीते समय लोगों को इतना गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स या जो टैक्स ये कलेक्टर्स है, तो आउल जैसा, कार्निवोरस राक्षस का जैसा, तो उनका सब पैसे को छीन लेते हैं। तो ये भौतिक जगत में जब इतना वो परेशान हो जाता है कि वे पैसे इकट्ठा करने के लिए प्रयास करते हैं, इधर से उधर से चीटिंग करके या तो स्टीलिंग करके, कैसे भी चोरी करके कैसे भी पैसा इकट्ठा करता है, तो कितना भी इकट्ठा करते हैं तो भौतिक जगत में भौतिक सुख सुविधा को पूरा करने के लिए उनका पैसा पूरता नहीं है। तो क्या करता है, घर में जो पति पत्नी, पति पत्नी और बच्चों को अननेसेसरली डांटते रहता है। तो ऐसे उनका पूरा जीवन ये हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो भक्ति करना भी चाहता है तो कुछ गलत गाइडेंस देने वाले लोग रहते हैं। तो मैं मायापुर में था, एक व्यक्ति बता रहा था, तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस कर रहा था। बिजनेस उन्होंने करने के बाद अभी उनको लगा कि अभी मुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मेरे पास है और ज़्यादा कुछ मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा जो ज़रूरत जितना है उतना पैसा मेरे पास है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो बिजनेस को क्लोज कर दिया और मायापुर में वो फुल टाइम सेवा के लिए ज्वाइन किया। तो वो व्यक्ति बता रहा था कि मैं ज्वाइन करने के बाद जितना मुझे मैं परेशान हो गया उतना पहले परेशान नहीं था। तो बता रहा था कि कई सारे लोग वो उनको बोल रहे थे, अरे आपने इतना जल्दी इतना कम उम्र में क्यों छोड़ दिया, ये सब क्या है, आपने जल्दी किया, आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपको ये, तो पूरा कंफ्यूज हो गया पहले। तो हालांकि भगवान का सेवा में भी फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं, हालांकि उसका नीड्स है, वो जान के सब कुछ करना चाहते हैं, फिर भी कभी कभी गलत गाइडेंस देने के लिए लोग आते हैं। तो मैं वहां पर मायापुर में देखा था, लेकिन वहां पर प्रभुपाद जी कृपा से रशिया के कई सारे डिवोटीज वहाँ पर है। तो मुझे फॉर्चुनेटली, मैं कुछ नरसिंह चतुर्दशी का कुछ दिन पहले मायापुर में था, वहाँ पर देख रहा था कि रशियन डिवोटीज, हालांकि वो इंडिया इंडियन बॉडी वाले नहीं है, हमें मतलब रशियन बॉडी वाले, तो वो भगवान का सेवा कैसे करें, मुझे देख के मुझे हैरान हो गया। तो एक भक्त था, वो रशियन डिवोटी था, तो जिस दिन से पंचतत्व डीटीस का इंस्टॉलेशन हो गया तब से आज तक हर रोज वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, डीटी सर्विस एवरी डे 5 to 7 बिफोर मंगल आरती वो 16 माला जप करता है। ऐसा नहीं कि कोई सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, फिर भी बिफोर मंगल आरती 16 माला जप करता है और 5 to 7:15 एवरी डे वो अल्टर में रहेंगे और भगवान को पंचतत्व डीटी है और हर एक डीटी को एक वो गंगा मिट्टी से वो साफ वगैरह करते, तो वो फुल वो खुद ही वो उसका लीड करते हैं और रोज उनका सेवा है। तो ऐसे डेडिकेटेड कितना वो मतलब मैं गया था राधा कुंज विहारी प्रभु, मैं और सुंदर चैतन्य प्रभु हम लोग गए थे, तो हमको भी उन्होंने सेवा दिया, मतलब वो अल्टर का क्लीनिंग, वो इतना सारे डेडिकेटेड, मतलब उनको पूरा माइन्यूट डिटेल्स वो सेवा करते हैं, तो हम इतना डेडिकेटेड नहीं कर रहे सेवा। तो ये भौतिक जगत में लोगों को केवल एम्बैरेसमेंट ही होता है और ये भौतिक जगत में असली में सुख और शांति हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अंत में अगर व्यक्ति भौतिक इंद्र तृप्ति करते करते टाइम नाम के जो सर्प है उनको निगल लेता है, तो इंद्र तृप्ति तो करते हैं लेकिन अंत में टाइम एंड ये जो टाइड वो किसी को वेट नहीं करता है। आप भक्ति करेंगे तो बच जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, अरे आपने भक्ति नहीं किया थोड़ा और साल जिएंगे, नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति था, तो वो डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये डॉक्टर मैं आपको कितना चाहिए उतना धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा आधा घंटा कुछ समय आप बढ़ा दीजिए, कुछ दिन बढ़ा दीजिए। तो नहीं, कितना भी आप पैसा देंगे, और यहाँ पर शिल प्रोपा जी बताते हैं कि कुछ रशियन साइंटिस्ट हैं, वो लोगों को ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं कि आप आगे जाकर आपको हम अमर बना देंगे। हम ऐसे कुछ साइंटिफिक थियरी निकाला है जिसके वजह से आप अमर बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तो हिरण्यकश्यप का मेंटालिटी है। हिरण्यकश्यप ने भी ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी को बोला कि मैं अमर होना चाहता हूं, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं आपको कैसे अमर बना सकता हूं। तो हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि मैं ऐसा चीटिंग करके उनसे अमर बनने का वर प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने ऐसा वर मांगा, मैं दिन में नहीं मरना चाहता हूँ, रात में नहीं मरना चाहता हूँ, जानवर से नहीं मरना चाहता हूँ, आदमी से नहीं मरना चाहता हूँ, ऊपर नहीं नीचे नहीं, ऐसा कई सारे चीज रख के ब्रह्मा जी से वरदान पूछा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। तो हिरण्यकश्यप को लगा मैं अभी अमर बन गया हूँ, लेकिन भगवान एक क्षण में प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को एक क्षण में वो मार दिए। तो इसलिए व्यक्ति इस भौतिक जगत में अमर बनने का प्रयास को छोड़ना है। तो अगर असली में सुखी होना है तो भगवान का भक्ति एक ही मार्ग है जिसके वजह से वो असली सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई भी विधान नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कभी अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में इंद्रिय शिथिल पड़ने लगती है और यद्यपि वृद्ध पुरुष इंद्रियों का भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है क्योंकि इंद्रिया साथ नहीं देती। ऐसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते, ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना तथाकथित वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मूर्ख रूसी विज्ञानी भी दावा करते हैं कि विज्ञान वैज्ञानिक प्रगति से वे मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सिर फिरों के नेतृत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु इन सबों को समेट लेती है। यद्यपि वे सदा जीवित रहना चाहते हैं, हिरण्यकश्यप में ऐसी ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, किंतु जब समय आ गया तो भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। तो इसलिए मृत्यु तो हर एक का निश्चित है। तो प्रभुपाद जी एक ही सॉल्यूशन बताते हैं कि आप एक परफेक्ट गुरु का आश्रय लीजिए और गुरु का आदेश के अनुसार सेवा कीजिए और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन कीजिए। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को रेगुलर बेसिस में अध्ययन करता है तो उसका ये शरीर लास्ट है और अंत में वो भगवान के धाम में जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।